समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाएं हम दोनों। इसी तरह नए दिन की शुरुआत भी एक अजनबी की तरह करते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया मौका होता है जब हम पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर और खुले दिमाग से आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सकारात्मक सोच की तरफ। यह गीत और इस तरह के और भी कई अमर गीत दिए हैं गायक महेंद्र कपूर ने, जिनके बारे में हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। इसके अलावा भी कई हस्तियों का भी जिक्र करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर देश और दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और सुभद्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Good morning, Jaya. Very happy Friday to all our listeners tuned in to us for our magazine program, Aaj Savere. So join in and enjoy the program. And for starters, Jaya, it's going to be some news headlines. So let's carry on.
बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने तथा आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आतंकरोधी अभियान, आतंकवादी ढांचे और आतंकवाद के लिए धन जुटाने को निशाना बनाने का काम मिशन मोड में जारी रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम कमजोर हो गया है। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की भी सराहना की।
The Ministry of Textiles has unveiled the district-led textiles transformation initiative in the National Textile Ministers Conference in Guwahati yesterday. According to the Ministry of Textiles, it is a strategic initiative designed to catalyze inclusive and sustainable growth across the country's textile landscape. The move will also help boost exports and create job opportunities. Under the initiative, the districts were categorized into champion districts and aspirational districts. Champion districts will focus on removing advanced bottlenecks, intervention including upgrading to mega common facility centers, integrating industry 4.0 and facilitating direct export market linkages. The aspirational districts would aim to build the ecosystem from the ground up in setting up foundation and formalization of workforce. The ministry aims to transform 100 high potential districts into global export champions and elevate 100 aspirational districts into self-reliant hubs. The ministry said these regions are prioritized for tribal belt development, connectivity improvement and geographical indication, tagging to position unique cultural handicrafts for premium global markets.
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपए लागत की बंदरगाह अवसंरचना और डिजिटल शासन परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की समुद्री क्षमता को मजबूत करना और भारत की समुद्र आधारित विकास रणनीति को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल चेन्नई में विकसित भारत विकसित बंदरगाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये पहले जलवायु परिवर्तन के अनुकूल डिजिटल रूप से सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों के निर्माण पर सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है, साथ ही सुरक्षा और सुगमता से व्यापार करने में सुधार लाती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक लक्ष्यों के अंतर्गत बंदरगाह आधुनिकीकरण, तटीय लचीलापन और व्यापार सुगमता को प्राथमिकता दी है। कुल परिव्यय में से 129 करोड़ 36 लाख रुपए चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए और 105 करोड़ 64 लाख रुपए कामराजर पत्तन लिमिटेड की पहलों के लिए आवंटित किए गए हैं। चेन्नई बंदरगाह पर श्री सोनोवाल ने 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जो सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण पर केंद्रित हैं।
Former Cabinet Secretary and Member Niti Aayog Rajiv Gauba has said that the Pragati has brought about a new momentum to infrastructure project execution in the country. In an exclusive interview to Akashwani News, he said that Viksit Bharat has to be a national endeavour. He added that students were involved in the ideation process of Viksit Bharat and the help of AI was also taken in developing a plan for Viksit Bharat.
Viksit Bharat has to be a national endeavor. Everybody has to join this. Those in the government, in the central government, state governments, students, those in the business, every citizen has to be part of this. It has to be a truly national endeavor. And as I said, the most important thing was, to, first of all, to think big. That the Prime Minister did.
Mr. Gauba said that technology is at the core of Prime Minister Narendra Modi's vision for Viksit Bharat at 2047 and revealed that some of the projects to be reviewed under Pragati are selected by the Prime Minister himself. He added that the iconic projects that were held up for years, including the Chenab Rail Bridge and Navi Mumbai Airport, have been speeded up as a result of Pragati.
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति में अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। प्रगति ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। यह मंच केंद्र, राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों को एकल डिजिटल इंटरफेस पर लाकर सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक दशक से अधिक समय से प्रगति ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में देरी का कारण बनने वाले मुद्दों के समाधान में मदद की है तथा जवाबदेही की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम प्रगति तंत्र के अंतर्गत समीक्षा की गई विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं पर एक नजर डालते हैं।
बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं में देरी अक्सर प्रशासनिक, तकनीकी, नियामक और प्राकृतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण होती है। इनमें भूमि अधिग्रहण, वन और रक्षा मंजूरियों से जुड़े मुद्दे तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियां शामिल हैं। प्रगति के बहुस्तरीय तंत्र के तहत 10,53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 237 बिजली परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है, जिनमें से कई परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री स्तर पर 4,12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 53 बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन 53 परियोजनाओं में 27 ट्रांसमिशन, 14 ताप विद्युत, 9 जल विद्युत और 3 कोयला खनन परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 3,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 43 विलंबित परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाएं भी कमिशनिंग के उन्नत चरण में हैं। प्रगति के तहत जिन प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया गया, उनमें मध्य प्रदेश की गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर परियोजना और खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन परियोजना प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं में देरी न हो इसके लिए सुधारों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रगति के तहत की जा रही निगरानी से विभिन्न विभागों के बीच होने वाली देरी में कमी आई है और बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कई रुकी हुई बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रगति के हस्तक्षेप के बाद चालू हो सकी हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है और राष्ट्रीय निवेश का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है। पल्लवी परमार और सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में रेलवे के 100 अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कार के रूप में 26 शील्ड दी जाएंगी। ये पुरस्कार भारतीय रेलवे में अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
Going over to some sports news in cricket, much-awaited fourth season of Women's Premier League WPL 2026 is set to begin today. Royal Challengers Bengaluru will take on defending champions Mumbai Indians in the opening clash at Dr. D.Y. Patil Sports Academy in Navi Mumbai. The match will begin at 7:30 p.m. The T20 tournament will begin with a grand opening ceremony ahead of the match. Several celebrities, including Yo-Yo Honey Singh, Jacqueline Fernandez and Harnaz Sandhu, Sidhu will perform during the ceremony. This edition of the WPL will be played across two venues, Dr. D.Y. Patil Sports Academy, Navi Mumbai, and the BCA Stadium in Vadodara.
और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल. शुरुआत चेन्नई से.
Yes, Jaya, starting with news from Chennai, the state government will roll out a pilot program to vaccinate adolescent girls against HPV for the prevention of cervical cancer in four districts, Thiruvannamalai, Ariyalur, Perambalur and Dharmapuri, by the third week after Pongal. The vaccination drive will cover government and government-aided schools. The pilot project aims at benefiting 27,196 girls aged 14 studying in 5,455 schools in the four districts. The vaccination being quadrivalent provides protection against four common HPV strains. Government schools students studying in class 10 and 12 in the city are set to undergo three revision tests before their board exams, which commence in March. Chief Education Officer Ms. M. Kabir said that the question papers will be prepared by the respective chief education officers and circulated to schools. Government also planned weekly revision exams for each subject. The first revision tests are to be held from the 8th to 22nd of this month. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has said that the union government has prioritized port-led development and was working towards fulfilling a holistic approach to improve efficient infrastructure. In his address at the launch of several schemes at Chennai today, the minister asserted that it was Prime Minister Narendra Modi's long-term vision to develop all the ports in the country for a Viksit Bharat. Over to you now for the next metro's news.
बिल्कुल सुभद्रा, अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में होगा. ये कार्यक्रम 12 जनवरी तक चलेगा. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस संवाद का औपचारिक उद्घाटन कल प्रमुख सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में होगा. श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को समापन सत्र में मौजूद रहेंगे. श्री मांडविया ने कहा कि देश और विदेश के 2,500 से अधिक युवा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र को एक और दिन यानी आज के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली के विधायी कार्य मंत्री परवेश साहिब सिंह ने सदन में कहा कि विपक्ष द्वारा दो दिनों से कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण सरकार का महत्वपूर्ण कार्य लंबित है. उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के प्रस्ताव पारित करने और प्रदूषण पर चर्चा कराने का उल्लेख करते हुए सदन की अवधि एक दिन बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंजूरी दे दी. श्री सिंह ने बताया कि आज सत्र के आखिरी दिन प्रदूषण समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाएगी. वहीं 53वां विश्व पुस्तक मेला कल से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा. यह मेला भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करेगा. एक रिपोर्ट.
9 दिनों तक चलने वाले विश्व पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के 1,000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे. पुस्तक मेला भारतीय सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और बुद्धिमता @75 विषय के माध्यम से श्रद्धांजलि देगा. आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस विषय को 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले विशेष रूप से तैयार किए गए पवेलियन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें पुस्तकें, प्रदर्शनियां, दृश्य प्रस्तुतियां और लाइव कार्यक्रम शामिल होंगे. यह पवेलियन भारतीय सेना के इतिहास, रक्षा और रणनीति पर 500 से अधिक पुस्तकों की प्रदर्शनी के माध्यम से सेना, नौसेना और वायु सेना के महत्व को प्रदर्शित करेगा. इस वर्ष कतर अतिथि देश है और स्पेन फोकस देश के रूप में मेले में भाग ले रहा है. प्रादेशिक समाचार.
So friends, welcome back to Atsaveri. We are going ahead with more metro news. Bengaluru now. A free civil services examination training center for rural and economically weaker background students was opened by Dr. Manmohan Singh, Bengaluru City University yesterday. The chairman of the Kannada Development Authority, Professor Purushottam Belimale, inaugurated the new center at Gyanajyoti Auditorium located in the Central Cottage campus in the city. Professor Belimale appreciated the initiative of the university university for providing skills to face competitive examination at a time when traditional curricula and teaching methods are no longer sufficient. He laid emphasis on extending appropriate guidance and training to the student community coming back from backward regions of the state. He opted for the public-private partnership model for such initiatives that can sustain career growth of the youth coming out of colleges. Presiding over the inaugural event, the Vice Chancellor of the University, Professor Ramesh B. stated that civil services offer a valuable opportunity to implement the constitutional ideals rooted in pluralism and to achieve the goal of building an egalitarian society. Jaya, over to you now.
बिल्कुल, अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनावों में मतदान को सुगम बनाने के लिए पराक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत 15 जनवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों सहित 29 नगर निगमों में लागू होगा. यह आदेश उन क्षेत्रों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों आदि पर लागू होता है जहां चुनाव होने हैं. मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, जबकि मतगणना अगले दिन होगी. उधर भारतीय जनता पार्टी ने नवी मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें वादा किया गया है कि अगले 20 वर्षों तक पानी और संपत्ति करों में कोई वृद्धि नहीं होगी. घोषणा पत्र को गुरुवार को महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविन्द्र चौहान और राज्य मंत्री एवं स्थानीय नेता गणेश नाइक ने जारी किया. शिवसेना, यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गठबंधन ने भी नवी मुंबई नगर निगम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बोलापुर वाशी एरोली ठाणे तटीय सड़क और पारसिक हिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाएं साझा की गई है. नवी मुंबई में 15 जनवरी को मतदान होगा. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17A वाशी में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है.
Going over to Hyderabad now, Telangana Chief Electoral Officer, CEO, C. Sudarshan Reddy has directed all district collectors and district election officers to give wide publicity to the phone numbers of booth-level officers, BLOs, and actively promote the Book a Call with a BLO facility available on the Election Commission of India's ECNet platform to improve voter mapping and verification. The CEO said the initiative will enable electors to directly contact their respective BLOs through the ECNet system to correct and validate their details during the ongoing electoral roll revision process. He instructed the officials to ensure that electoral registration officers, EROs, immediately update any changes in BLO contact numbers on the ERONet platform. The Greater Hyderabad Municipal Corporation Commissioner, along with district collectors and the district election officers across the state, have been asked to issue necessary directions to field staff for effective implementation of the facility. We have another news from Hyderabad. The Telangana state government is contemplating to introduce a new education policy soon. Chief Minister Revant Reddy stated this in Hyderabad when Himachal Pradesh Education Minister Rohit Kumar called on him and senior officials were present. He said free transportation will be arranged for all pre-primary school children in villages and girl students will be given top priority in the first phase of admission into the Young India Integrated Residential Schools. He also instructed officials to change the curriculum from 1st to 10th standard to suit the future needs of school children. An official release states that the Chief Minister explained about the reforms in education and the Young India Integrated Residential Schools to the visiting minister.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी FM गोल्ड पर जया और सुभद्रा के साथ. कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की, तो राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है. सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. शहर में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं मुंबई में कुछ ठंड का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज आंशिक रूप से बादल और धुंध छाई रहेगी. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. वहीं कोलकाता के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार ठंड का प्रकोप जारी है. कोलकाता में आज मध्यम कोहरा छाया रहेगा और आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और चेन्नई और हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड। The minimum temperature was 15 degrees Celsius. Maximum will be around 26. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 15 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius. And Jaya, let's begin with something important today. Today marks the Pravasi Bharatiya Divas. This is celebrated once in every 2 years. It is a significant event that honors the contributions of the Indian diaspora to their homeland. The Pravasi Bharatiya Divas Convention was first established in 2003 under the government and then Prime Minister late Atal Bihari Vajpayee as a platform to recognize, engage with the overseas Indian community. This flagship event of the Ministry of External Affairs since 2015, it has evolved into a biennial event with theme-based conferences held in the intervening years. Of course, the celebration commemorates the day in 1915 when Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from South Africa to lead the country's freedom struggle. Let's move on with the history
now. बिल्कुल श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 जनवरी 2026 है और आज से महज कुछ वर्षों पहले यानी कि वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में संशोधन किया। संशोधन के बाद नया मानदंड वित्तीय संस्थानों को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है।
1768, this day Englishman Philip Astley staged the first modern circus in London, and in 1979 the United Nations Children's Fund staged a concert fundraiser featuring dozens of leading light of late 70s pop music. 1982, this day the first Indian expedition to Antarctica happened. The Indian Antarctic program landed on the ice continent.
बिल्कुल, और जिसका उद्देश्य था कि वैज्ञानिक अनुसंधान करना, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि थी।
And yes, you have more?
बिल्कुल, वर्ष 1930 में अगर हम बात करें तो स्पेनिश आविष्कारक और इंजीनियर जुआन डी ला सियर्वा ने पहली ऑटोगायरो फ्लाइट का निर्माण किया था, जो एक ऐसा विमान था जो कम गति पर भी सुरक्षित रूप से उड़ सकता था।
एंड 2007 दिस डे एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स अनवील्ड आईफोन, द टच स्क्रीन मोबाइल फोन विद एन आईपॉड कैमरा एंड वेब ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज अमंग अदर फीचर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम पर्सनालिटीज। जया,
बिल्कुल, सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के स्वाधीनता सेनानी और राजनेता सर छोटू राम को। गरीबों के बंधु के रूप में वह रहबर-ए-आज़म कहे जाते थे। सर चौधरी छोटू राम शारीरिक रूप से छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व का कद बहुत बड़ा था। वे दीन दुखियों और गरीबों के बंधु, अंग्रेज हुकूमत के लिए सर तो किसानों के लिए मसीहा थे।
And one of the main leaders of the Chipko movement during the 1970s, Sundarlal Bahuguna took birth this day in 1927. The noted social worker environmentalist had been fighting for the preservation of forests in the Himalayas. That's of course the Chipko movement. First as a member of the Chipko movement and later spearheaded the anti-Thehri Dam movement starting 1980s to early 2004. This Padma Vibhushan awardee passed away at the age of 94 on May 21, 2021 due to COVID-19 complications at AIIMS Rishikesh.
हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार उस्ताद राशिद खान को। वे रामपुर सवान घराने से थे। उनके सुर जब छिड़ते थे तो हर कोई दीवाना हो जाता था। वह संगीत की साधना कुछ यूं करते थे कि लोग अपने सद्बुद्ध खो देते थे। वैसे तो राशिद खान को हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता था, लेकिन ठुमरी, भजन और तराना में भी उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं हुआ। वर्ष 2006 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उस्ताद राशिद खान को वर्ष 2006 में ही मिली।
And friends, from Rashid Khan to James Patrick Page, guitar virtuoso, multi-instrumentalist, founder member of British rock band Led Zeppelin, better known as Jimmy Page, celebrates his birthday today. Jimmy, of course, is well known for his blues and hard rock, but the super cool guitar god started out with folk tunes with some Eastern influences as well. Now the signature power ballad on Led Zeppelin 4 had this classic, the most played song on FM radios all over the world. Here it comes, two of them, Moby Dick and Stairway to Heaven.
आज हम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और कवि कमर जलालाबादी को भी उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। ये चार दशकों तक हिंदी फिल्मी जगत को बतौर गीतकार एक से बढ़कर एक गीत लिखकर प्रदान करते रहे। कमर जलालाबादी द्वारा लिखे गए गीत आज भी बड़े पैमाने पर सुने जाते हैं। फिल्म हावड़ा ब्रिज का मस्ती भरा गीत मेरा नाम चंचनचू और आइए मेहरबा बैठ जाने जा कालजई बन चुके हैं। जलालाबादी ने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। एक गीतकार के रूप में कमर जलालाबादी ने बहुत सारे अविस्मरणीय गीत हिंदी सिनेमा को दिए। 1954 में बनी फिल्म पहली तारीख के लिए कमर जलालाबादी ने एक ऐसा गीत लिखा था जो दशकों तक हर महीने की पहली तारीख को रेडियो पर बजाया जाता था।
है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख अजी पहली तारीख है।
And friends, American folk singer activist Joan Baez, who was at the forefront of the 1960s folk music revival, was born in Staten Island, New York. She celebrates her 85th birthday today. Joan, of course, is best remembered not only for her folk music performances, but for introducing a brilliant songwriter, god of folk rock, singer Bob Dylan, to the music world. Joan was also inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2017. After 60 years of performing, she announced her retirement in 2019.
Well, I'll be damned, here comes your ghost again. But that's not unusual, it's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone.
And today is the birthday of English geneticist Sir Alec Jeffreys, who discovered the technique of DNA fingerprinting, used for unique identification of humans, animals and other organisms from their DNA material. And we know that DNA fingerprinting has become important for forensic science investigations, paternity issues and detection of hereditary or genetic diseases. He was knighted in 1994 for his research in genetics. And today is also the birthday of Crystal Gayle, country and pop crossover singer known for albums like We Must Believe in Magic and When I Dream, both of which went platinum. She has a star on the Hollywood Walk of Fame, and also A.J. McLean, singer-songwriter of pop band Backstreet Boys celebrates his birthday alongside singer guitarist songwriter Dave Matthews Sanjaya.
आज जन्मदिन है अभिनेता सुनील लहरी की। जी हाँ, वही सुनील जो रामानंद सागर के ख्याति प्राप्त टेलीविजन धारावाहिक रामायण में लक्ष्मण की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस तरह की दमदार भूमिका निभाई कि आज भी लोग उसे भुला नहीं पाए हैं। हम आज ही बात करेंगे उनकी, जो एक कहानीकार हैं, एक फ्रेम में गाते हैं, अभिनय करते हैं, निर्देशन करते हैं और अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रेरणा भी देते हैं। हम बात कर रहे हैं फरहान अख्तर की।
अरे शांति मार रहा संसार, अब तू आने दे रफ्तार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार।
आज फरहान अख्तर का जन्मदिन है और इन्होंने भाग मिल्खा भाग से खूब ख्याति प्राप्त की थी। आज ही जयंती है गायक महेंद्र कपूर की, जिनके गाए हुए गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं और सबसे ज्यादा जो जहन में आता है वो है देशभक्ति गीत, उनमें से ये एक है।
भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं तुम मुझे।
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और सुभद्रा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार
नमस्कार।